आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। सरकर्दा लीडर्स वोटरों को रागिब करने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जंगबंदी की बातचीत के बावजूद रफा पर हमला करने का इरादा किया है। महकमे मौसमियात ने गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में कल तक शदीद गर्मी के हालात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत अगले साल गुवाहाटी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप्स की मेजबानी करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद राम जन्मभूमि का उनका ये पहला दौरा होगा। सदर जमहूरिया हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और शाम में सरयू आरती में शरीक होंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कौमी शाहरा और अयोध्या हवाई अड्डे को राम पथ से जोड़ने वाले रूट पर ट्रैफिक रास्ते तब्दील किए जाएंगे। अलबत्ता मामूल के अकीदतमंदों का मंदिर आने का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान सदर जमहूरिया के दौरे के तनाजुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि लोकसभा इंतखाबात का तीसरा मरहला करीब आ रहा है, आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुल्क भर में इंतखाबी रैलियां करेंगी। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में इंतखाबी रैलियां करेंगे। गुजरात में 7 मई को वाहिद मरहले के तहत पोलिंग होगी। वजीर दाखिला और बीजेपी के लीडर अमित शाह छत्तीसगढ़ में कोरबा में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आसाम में ढुबरी के मुकाम पर चुनाव मुहिम अंजाम देंगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव के लिए इंतखाबी मुहिम करेंगे। राजस्थान के वजीर आला और बीजेपी लीडर भजन लाल झारखंड के हजारीबाग में लोकसभा के उम्मीदवार मनीष जायसवाल की हिमायत में एक अवामी मीटिंग करेंगे और कागजात नामजदगी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई सरकर्दा उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरों के जरिए सियासी रैलियां और रोड शोज मुनक्किद किए जाने का भी प्रोग्राम है। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर आज कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान बस्ती से बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी और उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल के साथ होंगे। एक और बीजेपी और मशहूर भोजपुरी अदाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा हलके से आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कल भिंड में एक इज्तिमा से खिताब किया। जनाब गांधी ने कांग्रेस मंशूर में फराहम की गई मुख्तलिफ गारंटियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। जनाब गांधी ने नौजवानों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस 6 महीने में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी। जनाब गांधी ने कहा कि INDI इत्तेहाद दुनिया में पहली ऐसी हुकूमत होगी जो हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा की डिग्री रखने वालों को अप्रेंटिसशिप का हक देगी। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग फीसद से मुतालिक आदादोशुमार शाये किए हैं। कमीशन ने कहा कि पहले मरहले में 66.14% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे मरहले में 66.71% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबी कमीशन ने उजागर किया है कि पहले मरहले के इंतखाबात के आदादोशुमार से पता चलता है कि 66.22% मर्द वोटरों ने, 66.07% ख्वातीन वोटरों ने, जबकि 31.32% मुखन्नस वोटरों ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरे मरहले के इंतखाबात में 66.99% मर्द वोटरों, 66.42% ख्वातीन वोटरों और 23.86% मुखन्नस वोटरों ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए चार उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अदाकार से सियासतदान बने राज बब्बर को हरियाणा में गुड़गांव सीट से मैदान में उतारा है और साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से टिकट दिया है। सत्यपाल राय जादा को हिमाचल में हमीरपुर में उम्मीदवार बनाया गया है और भूषण पाटिल महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ से इंतखाब लड़ेंगे। कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने नामों को हतमी शक्ल दी है। आसाम में सभी सियासी पार्टियां इंतखाबात के तीसरे मरहले से कबल वोटरों को रागिब करने के लिए अपनी आखिरी कोशिशें कर रही हैं, जहां इस महीने की 7 तारीख को पोलिंग होगी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज ढुबरी लोकसभा हलके में अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए एक रैली से खिताब करेंगी। वजीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा और आसाम गण परिषद के सदर अतुल बोरा भी आज कई मुकामात पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
आसाम में तीसरे मरहले के चुनाव में मुतअद्दिद अहम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में 6 खवातीन समेत कुल 47 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। अहम लोकसभा सीट गुवाहाटी में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान असल मुकाबले की उम्मीद है। बीजेपी ने गुवाहाटी की साबिक डिप्टी मेयर बिजुली कलिता मेढ़ी को कांग्रेस की मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी के खिलाफ मैदान में उतारा है। धुबरी पार्लिमानी हलके में एआईयूडीएफ के सरबराह और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट बदुद्दीन अजमल कांग्रेस के अहम लीडर रकीबुल हुसैन के खिलाफ मैदान में हैं, जबकि एनडीए ने आसाम गण परिषद के जावेद इस्लाम को यहां से टिकट दिया है। बारपेटा और कोकराझार दोनों पार्लिमानी हलकों में सेरुखी मुकाबले का इम्कान है। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
भारत के इंतखाबी कमीशन ईसीआई ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब पोलिंग 7 मई की बजाय 25 मई को होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि यह फैसला मरकज के जेर इंतजाम इलाके की मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। इन नुमाइंदों ने कमीशन को बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन और कुदरती रूकावटें दरपेश थीं, जिसकी वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में मौके की कमी और दुश्वारी हो रही थी। लोकसभा इंतखाबात के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अहम पार्लिमानी हलकों के इंतखाबी मंजरनामे की सीरीज के तहत आज हम कर्नाटक में वाक उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
उत्तर कर्नल लोकसभा सीट 8 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है। ये पार्लिमानी हलका महाराष्ट्र और गोवा की सरहद से मुतसिल है। इसकी एक मुनफरिद सकाफत और रिवायत है। करवार जिला हेडक्वार्टर है, जहां प्रोजेक्ट सी ब्रिट के तहत बहरिया का अड्डा तैयार किया जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने सिरसी के 6 मर्तबा के एमएलए विशेश्वरा हेगड़े कैगेरी को कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अंजलि निम्बलकर के खिलाफ यहां से मैदान में उतारा है। पिछले साल हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार सिरसी असेंबली हलके से हार गए थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार खानापुर असेंबली हलके से हार गई थी। यहां कुल 16,38,450 राय दहिंदगान हैं। इस सीट से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने कल नई दिल्ली में भारतीय फिजाइया के नंबर 3 जंगी और खलाई हिकमत अमली प्रोग्राम WASP में शिरकत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय फिजाइया ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जामे कौमी ताकत के कलीदी अनासिर को बेनकाब करना, तनकीदी सोच को फरोग देना और हुकूमती नुकते नजर की मुकम्मल तफहीम को फरोग देना है। भारतीय फिजाइया ने मजीद कहा कि यह कोर्स भारतीय फिजाइया के 14 अफसरों, भारतीय बहरिया के 2 अफसरों जबकि भारतीय फौज और तालीमी बिरादरी से एक एक अफसर पर मुश्तमिल है। म्यांमार के लिए भारत के सफीर अभय ठाकुर ने कल म्यांमार के वजीर आजम और वजीर खारजा थान सोए से मुलाकात की। म्यांमार में भारतीय सिफारती खाना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों रहनुमाओं ने वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में आज और कल शदीद गर्मी के हालात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
جنوبی بھارت میں تلنگانہ، کرناٹک، آندھرا پردیش، کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے چار روز کے دوران گرمی اور امس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کے حالات جاری رہیں گے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے شمال مغربی بھارت میں کل تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی کمی کی پیشگوئی کی ہے۔ البتہ اگلے چار روز کے دوران وسطی بھارت میں اس میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران آئی ایم ڈی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، سکم، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے چار روز کے دوران ہلکی سے اوسط بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات سے قطع نظر جنوبی غزہ کے شہر رفح پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل رفح میں اپنے تمام مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ نیتن یاہو کا یہ بیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے تک پہنچنے کی جاری کوششوں کے درمیان آیا ہے۔ یرغمالیوں کے رشتہ داروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں جناب نیتن یاہو نے کہا کہ وہ کسی معاہدے کے ساتھ یا کسی معاہدے کے بغیر رفح پر حملہ کریں گے۔ ان کا یہ بیان رفح پر حملے کے خلاف امریکہ کی جانب سے تازہ وارننگ کے بعد آیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جب تک کہ عام شہریوں کو مناسب طور پر مکمل تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا وہ رفح پر حملہ نہ کرے۔ اسی دوران مغربی کنارے میں مقیم فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ رفح پر حملہ فلسطینی عوام کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رفح پر حملے کو سرخ لکیر قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ رفح پر حملہ ناقابل برداشت کشیدگی ثابت ہوگا۔ انہوں نے تمام بارسوخ لوگوں سے کہا کہ وہ اس حملے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ بھارت بیڈمنٹن عالمی فیڈریشن کے 2025 ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ بی ڈبلیو ایف عالمی جونیئر چیمپئن شپ گوہاٹی کے نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس میں ہوگا۔ بی ڈبلیو ایف کے صدر پال ایرک ہوائر کے مطابق بھارت میں بڑے پیمانے پر اہم بیڈمنٹن کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں اور ان کی صلاحیت عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی ڈبلیو ایف کے لیے عالمی جونیئرز کو دوسری بار بھارت لانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بی ڈبلیو ایف عالمی جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2025 کے ذریعے 2008 کے بعد پہلی مرتبہ بھارت میں ٹورنامنٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے جیت کے لیے 145 رن کے نشانے کو 6 وکٹ پر 19 اوورز 2 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ مارکس اسٹوینس کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے لکھنؤ سپر جائنٹس نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے چنئی سپر کنگز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔
شکریہ کلیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب نے نائب صدر جمہوریہ کے راجستھان کے شہر جےپور میں دیے گئے اس بیان کو خصوصیت دی ہے کہ تعلیم تبدیلی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، ہر بچے کو اس کی دلچسپی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ روزنامہ ملاب، انقلاب اور دیگر کئی اخباروں نے ایڈمرل دنیش ترپاٹھی کے بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے سے متعلق خبروں کو سرخی بنایا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کا یہ بیان بھی اخباروں میں نمایاں ہے کہ عوام کو گمراہ کرنا جمہوریت کے لیے خطرہ۔ فرضی ویڈیو کے معاملے پر کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انتخابات منشور پر لڑنا چاہیے۔ مہاراشٹر میں 11 پارلیمانی سیٹوں کے لیے 298 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے جگہ دی ہے۔ مہاراشٹر میں 13 مئی کو چوتھے مرحلے کے لیے انتخابات ہوں گے۔
خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر جائیں گی۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم تیز ہو گئی ہے۔ سرکردہ لیڈرز ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک ریلیاں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت کے باوجود رفح پر حملہ کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے گنگا کے علاقے والے مغربی بنگال، اڑیسہ، بہار اور جھارکھنڈ میں کل تک شدید گرمی کے حالات کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت اگلے سال گوہاٹی میں بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن جونیئر چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گا۔ और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।